ओम अज्ञानतिमिरान्धस्याज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यनन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो आत्मवान भव। ये श्लोक मैंने गीता में पढ़ा था हाल ही में। तो जब हम अभी, ये तो आंसर बहुत फिलोसॉफिकल है, फिर भी थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का। हम लोग जो काम करते हैं ना, वो तीन गुण में काम करते हैं, सत्व गुण में करते हैं या रजोगुण में करते हैं या तमोगुण में करते हैं, कभी कभी मिक्सचर में करते हैं। लेकिन हमारे कोई भी काम जो है ना, वो तीन गुणों के अंदर ही होते हैं। जो शरीरधारी है ना आदमी, शरीरधारी जिसको शरीर प्राप्त है, वो तीन में से एक या दो या तीन में मिक्स काम करता है। तो इसमें क्या होता है, अहंकार पैदा होता है। जब हम गुण के अंदर काम करते हैं ना, इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड्स ऑफ नेचर, तो उसमें अहंकार होता है निर्माण। नंबर दो, फल निर्माण होता है, फल फ्रूट ऑफ द एक्टिविटी निर्माण होता है। तो इसलिए वो ह्यूमिलिटी पैदा होना मुश्किल है, इसलिए ह्यूमिलिटी निर्माण होना मुश्किल है। और प्रोफेशनलिज्म आ सकता है, लेकिन डिवोशन आना मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए ये सब जो बातें ना, ये एक भक्ति कर सकता है। बाकी लोग तड़पते रहेंगे वो ह्यूमिलिटी डिवोशन प्रोफेशनलिज्म साथ में कैसे लाने का, या तो बहुत हम्बल है और प्रोफेशनल नहीं है, या तो डिवोशन है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, है ना। दोनों लाने के लिए भजन करना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। इसमें प्रैक्टिकल बात एक ही है कि भक्ति और भजन करने से ही हम लोग ये सब कुछ साथ में कर सकते हैं। देखो कैसा है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप अगर बहुत ऐश्वर्य वाले हैं, बहुत आपके पास बड़ा पोजीशन है, बहुत पैसा है, बहुत अधिकार है आपके पास, इन्फ्लुएंस है, तो हम्बल रहना मुश्किल है ना। लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड में है। अगर आप डिवोटी हैं तो धर्मराज के राजा भी होंगे आप, और नम्र भी हो सकते हैं, चरण छूने को भी तैयार हैं तुरंत। तो ये कुछ कुछ हमारे मोदी में हमको दिखाई पड़ता है। देखो इतने बड़े प्रधानमंत्री है, लेकिन हनुमान गढ़ी में हनुमान जी को पूरा दंडवत प्रणाम किया, कंप्लीट स्टेज पे आया तो पूरा प्रणाम, संतों को प्रणाम किया। ये तभी मुमकिन है जब ही डिवोशन होगा, तभी साधना होगी, तभी। बिना साधना के आदमी नम्र नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है वो। और कितना भी कुछ छोड़ दिया ना, फिर भी लाभ चाहिए ही चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए ही चाहिए, और पूजा ये भी चाहिए ही चाहिए। पूजा मतलब क्या, लोग हमारा गौरव करें, हमारे को पूजें, हमारा नाम बढ़े, इज्जत बढ़े। कम से कम मैं सात्विक हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन मेरी कीर्ति बढ़े, लोग जाने कि ये दानी आदमी है, बहुत डोनेशन करता है, बहुत दिलदार आदमी है, इसकी भी अपने को एक इच्छा होती है। ये सब कुछ जो भौतिक दुनिया के दोष है ना, द फॉल्ट्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ये केवल भजन से ही नष्ट हो सकते हैं। बिना भजन के ये अगर कोशिश करेंगे ना, तो आप तीन में से एक ही हासिल कर पाएंगे एट द मोस्ट, वो क्या है, प्रोफेशनलिज्म। पर डिवोशन और ह्यूमिलिटी बहुत दूर हो जाएगी उससे। और सर्विंग इन डिवोशन का मतलब ये बहुत ही सही है उन्होंने जो कहा है। मैंने, मुझे उनका वो इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको रिकॉर्ड कर सबको भेज दिया, है ना, कारण वो बहुत अच्छा था, बहुत डीप था वो। लेकिन ना, जैसे दया क्या है, ये दया क्या है, ये मांस खा के आपको समझ में कभी नहीं आएगा। आप अगर मांसाहार करते होंगे ना, तो आपके अंदर निर्दयता बन रही है, पना मतलब बढ़ रही है, तो निर्दयता का, निर्दयता के ऊपर जो खाना आधारित है वो अगर आप खा रहे हैं तो दया की बातें करके आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या बोल रहा है आदमी, है ऐसा लगेगा आपको। तो हमारा जीवन शैली जो है ना, हमारा जीवन पद्धति जो लाइफ स्टाइल है, वो हमारा हमेशा भजन के अनुकूल होना चाहिए, तब जाकर आपको ऑटोमेटिक ह्यूमिलिटी आएगा, आपके पास बहुत सारा यश आएगा ना, सक्सेस आएगा, तो आपको अंदर से लगेगा कि ये सक्सेस मेरा नहीं है, ये तो भगवान का है, ये तो गुरु जी का है, ये तो प्रभुपाद का है, ऐसा आपको लगेगा। प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायलॉग तो बहुत मार सकते हैं हम, लेकिन दिल से आपको लगेगा कि ये मैंने नहीं किया है, ये उनकी कृपा है। अभी समझो एक अच्छा प्रवचन दिया, समझो बहुत बढ़िया प्रवचन दिया, 1,000 लोग आके तालियां बजाए उसके अंदर, तभी आपको लगेगा मैं कितना महान प्रवचन करता हूँ, देखो मेरे को कितना नॉलेज है, देखो कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, कितने लोग पागल हैं मेरे कथा के पीछे। हाँ, ये सोचना मतलब मटेरियल है, और कथा भी मटेरियल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनका तालियां बजाएंगे वो, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। और समझो बहुत बढ़िया कथा दिया, उसमें 5,000 लोग थे, सब लोग रो रहे थे कथा में, पर आपके लगेगा ये सब गुरु की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा है, ये सब वैष्णवों की कृपा है, मुझ में कुछ नहीं है, मैं तो कठपुतली हूँ, मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा ना, मतलब इसमें डिवोशन है। अरे चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि समझो किसी के पास बहुत धन है और बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सौंदर्य भी है, बहुत नॉलेज भी है, बहुत पावर भी है, शरीर भी बहुत पावरफुल है उनका, ऐसा सब होते हुए अगर किसी व्यक्ति में नम्रता पाई जाती है, इफ़ यू सी हो ह्यूमिलिटी इन दैट पर्सन, इतना सब होने पर भी, तो वो राधा रानी की कृपा ही मानी जाती है, वो इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में ना गरीबी में सब लोग नम्र रहते हैं जनरली स्पीकिंग, लेकिन पैसा आते ही इतना घमंड आ जाता है, वो नेचुरल है बहुत, उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन पैसा आने के बाद भी अगर वो हाथ जोड़े नम्र रहेगा तो फिर वो कृपा है भगवान की। कृपा किसको कहते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हो रहा है तो कृपा बोलते हैं उसको, है ना, आई एम नॉट द डूअर, अपने आप हो रहा है वो, तो फिर बोलते हैं ये तो कृपा है। कृपा का मतलब बियॉन्ड योर कैपेसिटी, नॉट बाय योर कैपेसिटी, आपके कैपेसिटी में नहीं हो रहा है वो, भगवान की कृपा से हो रहा है, ये जानना ही नम्रता है। संत को संत क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इतने महान, उनका नॉलेज है, साक्षात्कार है, उनका जीवन भक्ति पूर्ण है, फिर भी वो इतने नम्र रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं इसके अंदर, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। और ये सब जानने के लिए और ये सब विचार मन में आने के लिए रोज का जप है ना बहुत जरूरी है। आप भक्ति विधान में काम कर रहे हैं, समझो आप बहुत बार सुनते हैं सुनते सुनते हैं, लेकिन जब तक आप भजन नहीं करेंगे ना, भजन नहीं करेंगे, भगवान का नाम का जप नहीं करेंगे, सब कुछ ना वो ऐसा है ना, देखो ऐसा रखेंगे ना, डालेंगे ना पानी इसके ऊपर, तो कभी अंदर नहीं जाएगा, उसके ऊपर से बह जाएगा, कितना भी डालो, उधर दूध डालो, शरबत डालो, अमरुद डालो, सब बह जाएगा, ऐसा रखेंगे ना तो ही पकड़ेगा वो, और वो पकड़ेगा तो पी सकेगा आप, ऐसा है। मराठी में कहावत है, पालत्या घड़ावर पानी, हाँ उल्टे घड़े पे पानी डालने से कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को सबका भाग्य है कि हम लोग भक्ति विधान में ये सब सुन रहे हैं, अभी सुनने को मिला भी भाग्य की बात है ना, अभी किसी को सुनने को मिलेगा नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा क्या है ये, उसको बोलेगा कि अरे मैं पैसे वाला हूँ, मेरा गर्व जो है वो सही है, क्या उसमें गलत क्या है। लेकिन भक्ति विधान में कम से कम आपको सुनाई पड़ रहा है कि गलत है, नम्रता होनी चाहिए, तनादपि सुनी चेना, तो ये भाग्य होने पर भी अगर वो भाग्य को जीवन में नहीं उतारेंगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। एक होता है दुर्भाग्य और उसको कोई लाभ नहीं होता है, एक होता है वो व्यक्ति जो उसको भाग्य मिला है सुनने का, लेकिन सुनने पर भी वो नहीं करता है, फिर वो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। कितनी बार बताने पर भी सुनने पर भी जो नहीं करता है उसको रियल दुर्भाग्य कहते हैं। इवन आफ्टर नोइंग यू आर नॉट डूइंग, देन इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। मैं सबको ना हमेशा अपील करता हूँ कि भक्ति विधान में इतना स्वच्छ वातावरण है, क्लीन वातावरण है, मतलब फिजिकली भी क्लीन है और वातावरण भी दिव्य है, तो उसमें काम करने का मौका मतलब बहुत जन्मों का पुण्य है। और ये पुण्य प्राप्त करने के बाद में अगर आचरण में अगर समझो भगवान का जप नहीं है, चार नियम का पालन नहीं हो रहे, मांसाहार छोड़ना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, तंबाकू सिगरेट बीड़ी नहीं पीना, दारू नहीं पीना, ये जब तक जीवन में नहीं उतरेगा ना, तब तक सारा भाग्य जो आपका है, भाग्य निश्चित है, आपने किया पुण्य, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा है, कभी कभी ना हम लोग अच्छी वस्तु जो है ना, अच्छी वस्तु जो हमने बहुत पहले पुण्य करके अभी प्राप्त की है, ऐसी अच्छी वस्तु खोने पर ही उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। जैसे कोई अच्छी औरत घर पे है, वो मैंने एक बचपन में पिक्चर देखी थी स्कूल में, टेन नाम की, हाँ, तो वो हीरो था ना, वो हमेशा ऐसे बीवी के तो खोज में था, तो 10 out of 10 मार्क्स होंगे उसको ब्यूटी में, इसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें। तो आखिर में उसका वो उसकी खुद की बीवी थी, एक अच्छी बहुत नम्र थी, घर पे सेवा करने वाली थी, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी वो, इतनी ऐसा आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं थी, पब्लिक में ऐसा डांस करने वाली वगैरह नहीं थी, तो वो बहुत असंतुष्ट था, वो 10 की खोज में था। तो 10 की एक बार उसको औरत मिली जो उसके हिसाब से 10 थी, 10 by 10, तो उसके प्रेम में पड़ा वो, और जरा सा कुछ हो गया तो वो झगड़ा करके चली गई, उसको छोड़ के चली गई। तब उसको पता चला कि मैंने ऐसे कितने बार झगड़ा किया, मेरी बीवी ने छोड़ के चली गई नहीं मुझे, वो शी स्टिल विथ मी एंड सर्विंग मी। तो उसको पता चला फिर वो 10 था ना, वो उसकी बीवी थी एक्चुअली, द रियल 10 by 10 वॉज इज बीवी ओनली, नॉट द आउटसाइड गर्ल हु वॉज फिल्म स्टार, हु वॉज अ यू नो स्टार थी वो, जो भी लड़की थी वो डायरेक्ट। तो वो अच्छा मूवी था, बहुत बचपन में देखा था, और तब मुझे समझ में आया कि रियल ब्यूटी ना जो है ना, वो है हमारी जो अंदर के होते हैं ना गुण, होते हैं ना सद्गुण, दैट इज रियल ब्यूटी। तो उसी प्रकार से अपना जो नौकरी है, आपको लगेगा यार क्या, अरे अभी पगार नहीं मिल रहा है अभी वो, लेकिन नौकरी भी इतना अच्छा नहीं है, क्या मालूम प्रमोशन भी नहीं होता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग बाहर काम करते हैं, तगड़ी तनख्वाह है उनको, लेकिन ना 12 से 16 घंटा काम करना पड़ता है, और इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि बीवी से बात करने को समय नहीं, उनको बीमार पड़ने को समय नहीं बोलो, लेकिन बार बार बीमार पड़ते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, फीवर, ये बार बार होते रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो वातावरण है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सुबह भी आज एक बात कर रहा था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में और विश्व में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उनका करोड़ों का बिजनेस है, और लोगों को भी बहुत बढ़िया बढ़िया पगार देते हैं, है ना, लेकिन वो पैसा कमाने के माध्यम में वो कंपनियां बहुत सारा भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार क्या कहते हैं उसको, करप्शन, कमाने के लिए मतलब कैसे भी करके सामने वालों को सुला दो लेकिन अपना बिजनेस करो। कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो कि आप भी बढ़ो हम भी बढ़ते हैं, है ना, आप भी लाभ लो आप भी लाभ लो, दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं तो अच्छा रहेगा, सबको भी लाभ होगा हमको भी लाभ होगा, विन विन सिचुएशन। लेकिन बहुत सारी कंपनियां आजकल वर्ल्ड में क्या करती है, अपने ओपोनेंट को सुला देती है और आगे बढ़ती है, कभी कभी भ्रष्टाचार करती है, करप्शन करती है, और पैसा कमाने का रास्ता जो है ना वो सही नहीं होता है उनका। तो जब ऐसे कंपनी में हम लोग काम करते हैं ना, तो आप तो बहुत क्लीन हो, आप लोग वो कंपनी में भी काम गड़बड़ नहीं कर रहे हो, लेकिन कंपनी का जो मेन उद्देश्य है ना, जो हेड है ना, उनका जो पॉलिसी है वो गड़बड़ है। तो आप भी जब तनख्वाह लेते हो तो वो जो कर्म है ना, कर्म वो धन के माध्यम से आपके भी घर पे आता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो कंपनी का जो पोल्यूशन है वो पगार के माध्यम से आपके घर पे पहुँच रहा है, उसी पैसे की रोटी आप आपके परिवार को दे रहे हो। तो इसलिए जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं वो जगह का जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त कंडीशन या भ्रष्टाचार युक्त कंडीशन, विद भ्रष्टाचार और विदाउट भ्रष्टाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी, आपका इंस्टीट्यूशन क्या क्लीन बिजनेस करते हैं कि पैसे के लिए करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, तो वो जो मनोवृत्ति है ना वो पगार के रूप में आपको घर पे पहुंचती है आपकी, और आप पर वो अफेक्ट करेगी क्योंकि आपको न चाहते हुए भी कंपनी का पॉलिसी को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको मालूम है कंपनी चीटिंग कर रही है लेकिन आपको उसको काम करना पड़ेगा, नौकरी बचाने तो करना ही पड़ेगा। कंस के समय पर एक कहानी है मेरी भागवत में, सब लोग ध्यान से सुनो। आज कृष्ण की जन्माष्टमी कल हुई है, हाँ, तो जब भी कृष्ण भगवान कंस को मारने के लिए अखाड़े में पहुंचे, हाथी को मार के जब अखाड़े में पहुंचे, तो उनके सामने दो मल्ल योद्धा आए, रेसलर्स, मुष्टि योद्धा, और वो पहाड़ के समान थे, बिल्कुल पहाड़ के समान, और वो वर्ल्ड चैंपियन थे रेसलिंग में, बेस्ट बेस्ट मल्ल युद्ध थे वो। और ये बहुत कोमल कोमल बालक थे, 11 साल के, सुंदर, एकदम मक्खन जैसा शरीर था उनका, मुलायम। तो वो खुद ही बोल रहे हैं कृष्ण बलराम, अरे आप तो पहाड़ जैसे मल्ल युद्ध हो, मल्ल योद्धा हो, हम लोग बच्चे हैं आपके सामने, ये बराबर का मैचिंग नहीं है। कुश्ती किस में होता है? जो बराबर के होते हैं उसमें होता है। तो चाणूर क्या बोलता है, मुष्टिक चाणूर और मुष्टिक क्या बोलते हैं, अरे तुमने अभी अभी हाथी को मारा, हमने देखा है वो हाथी को, 10,000 हाथी का बल था उसके अंदर, तुमने उसको मार के तुम आए, तुम बहुत बड़े वीर हो हम जानते हैं, इस संकोच मत करो, हमारे साथ युद्ध करो। तो सभा में ना अखाड़े में सभी गांव के लोग आए होते हैं मेला देखने के लिए, उसमें एक लेडीज कैंप है, लेडीज बैठे रहते हैं, तो लेडीज क्या बोलते हैं, अरे ये अच्छा नहीं है, इतने कोमल सुंदर सुंदर से बालक हैं, इनके सामने वर्ल्ड के बेस्ट लेसर खड़े कर दिए हैं, अरे एक हाथ लगाए तो भी मर जाएंगे बच्चे लोग, ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये अन्याय है, ये राजा ने ऐसा जोड़ी जमाने का जरूरत नहीं था, अरे बच्चे बच्चे के साथ खेलते, बड़े बड़े के साथ खेलते, उत्सव है ना, लेकिन ये तो उनको मारने का प्लान कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो वो एक औरत क्या बोलती है उसके अंदर कि इस जगह पर अन्याय हो रहा है, कंस के दरबार में यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ जैसे योद्धाओं को सामने जा रहा है, बच्चों को भेजा जा रहा है, ये षड्यंत्र अच्छा नहीं है, ये अन्याय है। और वो औरत एक बढ़िया बात कहती है कि जब अन्याय होता है और आप अन्याय के जगह पर ही बैठे रहते हो, अन्याय को देखते रहते हो, कुछ करते नहीं हो, मतलब ना उसको रोक रहे हो, ना बढ़ा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली बैठ के देख रहे हो, तो औरत कहती है कि अगर आपको सामने अन्याय हो रहा है और आप उसको देखते रहते हो तो अन्याय का फल आपको भी मिलेगा, आपने कुछ नहीं किया है लेकिन आप देखते रह गए, तो क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो बोलते चलो हम लोग सब निकल जाते हैं यहाँ से। उतने में युद्ध शुरू होता है और कृष्ण बलराम उनको मार देते हैं। तो मुझे ध्यान में आया कि आप शायद अच्छे होंगे लेकिन आप अगर गलत वातावरण में हैं तो उसका परिणाम आपके ऊपर होगा। आप अगर एबॉर्शन के नर्सिंग होम में काम करते हो, हाँ, ऑफिसर बन के काम करते हो, आप एबॉर्शन नहीं करते हो, आपको विश्वास भी नहीं उसके ऊपर, आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन आप वहाँ काम करते हो और फिर आपकी तनख्वाह आती है। तनख्वाह कैसे आती है, जब बच्चे औरत लोग वहाँ पर एबॉर्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर उसके से आपका तनख्वाह निकलेगा, बराबर है? तो वो तनख्वाह जो है वो एबॉर्शन का ही फल है, और वो तनख्वाह से आप जब खाना खाएंगे ना तो आपका दिमाग भी उस पाप से भ्रष्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे लड़की क्लर्क है वहां पर बैठी हुई है, खाली नाम लेती है, एज लेती है, एड्रेस लेती है, फोन नंबर लेती है, पेपर बनाती है, अंदर भेजती है, फिर डॉक्टर और नर्स उसका एबॉर्शन करते हैं। लेकिन क्योंकि आप उस संस्था में काम कर रहे हो, वो तनख्वाह जो आपको मिलेगी वो बच्चों को मार के ही मिलेगी तनख्वाह आपको, तो आपका कर्म फल आपको मिलेगा बिना किए हुए, क्योंकि आप वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो भक्ति वेदांत में काम करना अच्छा क्यों है, क्योंकि मैं जानता हूं एज अ ट्रस्टी कि भक्ति वेदांत में कोई करप्शन नहीं है, हो तो बता देना मुझे, मैं एकदम जाहिर बात में बोल रहा हूं आपको, आपको लगेगा कोई करप्शन है मुझे आके बोल देना, क्योंकि हम लोग क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने ना, हमको सब जगह क्या पता चल रहा है, मन तो खाली बैठे हैं ऊपर, लेकिन आप लोग जानते हैं क्या हो रहा है, आप आके बताएंगे तो समझेगा हमको, है ना। तो हम लोग ये दावा नहीं करते कि हम सब जगह देखते हैं, हमारे पास सब दृष्टि है, टीवी है सब जगह पर, लेकिन वो देखने को टाइम चाहिए ना टीवी भी, तो कभी कभी जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, वो उनको सब पता होता है क्या चल रहा है, छुप छुप के क्या चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा पर्पस तो ये निश्चित है, 22 साल से मैं यहाँ ट्रस्टी हूँ, जानता हूँ कि ट्रस्टी लोगों का उद्देश्य है कि यहाँ पर क्लीन और क्लीन और क्लीनेस्ट काम हो, एकदम ईमानदारी से काम हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई किसी को लूटने का प्रयास ना किया जाए, उल्टा गरीब हो तो उसको हेल्प किया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, उसको रियायत दी जाए और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाए, कोई कमीशन बिजनेस ना हो, कोई कट प्रैक्टिस ना हो। ये हमारा हॉस्पिटल का पर्पज़ है, क्योंकि ये सब करेंगे ना तो सत्वगुण का निर्माण होगा, और सत्वगुण का निर्माण होगा तो ही यहाँ पर भगवान का नाम का प्रसारण हो सकता है। बिना सत्वगुण के वातावरण के यहाँ पर हरे कृष्ण का नाम गूंजना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो भगवान की कृपा है। आपके पास बहुत बढ़िया बीज है, लेकिन जमीन पथरीली है, हार्ड जमीन है, तो पेड़ नहीं आएगा उसका। अच्छे बीज के लिए अच्छा भूमि चाहिए, तो अच्छा पेड़ आएगा, अच्छा फल देगा वो। तो वो अच्छा भूमि जो है ना, वो क्लीन होना चाहिए, मतलब क्या, नो करप्शन, अच्छा सेवा भाव और प्रोफेशनलिज्म, मतलब क्या, एकदम बेस्ट केयर, क्वालिटी केयर देना चाहिए, और साथ में वो पेशेंट को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू आप हमारे पास आए, वो टुंगा हॉस्पिटल भी था, वो होली फैमिली भी था, लेकिन आप हमारे पास आए, थैंक यू वेरी मच, अगली बार तक तकलीफ हुई तो हमको याद करना, वो थैंक यू बोलने की भावना होनी चाहिए, और जो भी तनख्वाह मिल रही है उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में कौन सा ऐसा संस्था है जो क्लीन है, एकदम क्लीन, हाँ कट थ्रोट प्रैक्टिस नहीं करता है, लेकिन क्लीन प्रैक्टिस करता है, श्रद्धालु भाव से प्रैक्टिस करता है, सेवा भाव से करने वाला कोई संस्था ही नहीं है। इसलिए जैसे आप भाग्यवान हो, वैसे मैं भी भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे अभी अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संस्था में, अच्छे पर्पस के लिए काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि मैं बाहर अभी काम करना मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सब लोग वहाँ पर पॉलिटिकल रहते हैं, हाँ षड्यंत्र बनाते हैं, आप मीटिंग में बैठे तो अच्छी बात करेंगे, जरा वॉशरूम में गए, निकल के बीच में तुरंत आपके बारे में गंदी बात की जाती है, ऐसा वातावरण यहाँ पर नहीं है। क्योंकि मैंने 2 साल 2 महीना सऊदी अरब में काम किया है, हाँ, और मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र किए गए वहाँ पर, इतना पॉलिटिक्स किया गया, हार्ड वर्क करने के बाद भी रॉन्ग रिपोर्ट दिया गया, बॉस का माइंड पोल्यूट किया गया, मेरा प्रमोशन रोकने का प्रयास किया गया, हर तरह से मेरे लिए तकलीफ थी। तो यहाँ पर आने का था कि मैं स्वर्ग में आ गया, तो यहाँ पर कुछ तकलीफ भी हुआ ना मुझे, समझो कुछ झगड़ा हो गया, कुछ मतभेद हो गया, समझो कुछ मन का जैसा नहीं हो गया, मन के जैसा नहीं हुआ, तो भी मैं कहता हूँ कि अरे सऊदी अरब से हजारों गुना अच्छा है, थोड़ा सा मन के खिलाफ हो तो क्या हुआ, घर में बीवी भी कभी चिल्लाती है तो क्या छोड़ देने का उसको तुरंत, तो ऐसा होते रहता है, उसमें क्या है, हम भी कुछ बोल लेते हैं, बीवी कुछ बोल देती है, तो रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ है मतभेद होना, लेकिन जो वातावरण बना के रखा है वो तो हम लोग वातावरण ना अपने चॉइस से खरीद नहीं सकते। हम जाएंगे रिलायंस के अंदर बोलेंगे एक कल से करप्शन बंद है, इधर से कल जाके कल से ये सब जो बिजनेस माइंड है बंद करने का, तो यू कैन चेंज ये हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, दानावटी हॉस्पिटल, बिच कैंडी हॉस्पिटल, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जगह पर काम करने को मिलना ये तो पूर्व पुण्य का ही फल है। जैसे अच्छा पति मिलना और अच्छी पत्नी मिलना, ये पूर्व पुण्य के बिना नहीं नहीं हो सकता है, वो पुण्य रहेगा तो ही आपको वैसी पत्नी मिलेगी, नहीं तो बड़े से बड़ा आदमी रहेगा ना तो उसको झगड़ालू वाइफ मिलेगी, प्रधानमंत्री होगा तो भी घर में तकलीफ होगी उसको, वो बोल नहीं सकेगा किसको, लेकिन तकलीफ है उसको। तो ये सब है ना, अच्छे बेटे मतलब बॉयज एंड सन्स एंड डॉटर्स अच्छे होना, अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पति मिलना, अच्छी नौकरी मिलना, अच्छे घर में रिश्ता होना, ये सब पुण्य की बातें हैं, पहले जो किया उसका फल मिलते रहता है। तो हम लोगों का नाम बहुत पुण्य है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और एक बात मैंने सुनी थी कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्रीमद् भागवत का महात्म्य में लिखा है कि अनेक जन्मों के पुण्य के बाद ही श्रीमद् भागवतम सुनने को मिलता है। अनेक जन्मों के बाद पुण्य करने के बाद श्रीमद् भागवत कान में गिरता है, नोइंगली अननोइंगली। उस जगह में आप जाएंगे जहाँ कान पे गिरेगा, मतलब आपने प्लान नहीं किया है, लेकिन कान पे गिरने पर भी आपको पूर्व पुण्य होना होएगा तो ही कान पे पड़ेगा आपके। वैसे भगवान के नाम के बारे में सुना है मैंने कि पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए बिना भगवान का नाम का परिचय नहीं होता है किसी को, नहीं होता है। तो मैं सोच रहा था कि देखो भक्ति विधान में श्रीमद् भागवत की प्रार्थना में बोलते ना रोज, हम लोग 3 दिन श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं, उसमें श्लोकों का उच्चारण करते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं, उसके ऊपर भाषण करते हैं, और खड़े सुनने वाले जो हैं वो होंगे 10-15-20 स्टाफ मेंबर्स, कभी कभी 30 होंगे, लेकिन 150 मरीज वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी मुड़ के सुनते हैं क्या बोल रहे हैं लोग माइक्रोफोन पे, क्या बोल रहे हैं, और उनके कान पे श्रीमद् भागवत के श्लोक भी पढ़ रहे हैं, शिक्षाष्टक भी पढ़ रहा है, उसका तात्पर्य भी पढ़ रहा है, और अच्छी अच्छी बातें जो कभी कभी सुनने को नहीं मिलेगी वो सुनने को मिलती है उधर। डॉक्टर संखे बोल रहे हैं, हाँ डॉक्टर शिव प्रसाद बोल रहे हैं, ये बड़े पुराने भक्त हैं, बहुत नॉलेज है उनको, बहुत साफ दिल के हृदय के वे लोग हैं ये। वो लोग जब दिल से बात करते हैं प्रेम से तो वो सुनने का लिए भाग्य चाहिए। तो वो जो मरीज आए हैं, अरे बीमार बनकर डॉक्टर को दिखाने के आए हैं, लेकिन बराबर 10 बजे भक्ति विधान में बैठे हैं वो। वो दोपहर को भी आ सकते हैं 3 बजे, शाम को 5 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन वो 10 बजे आकर वहाँ खड़े हैं और भागवत उनके कान पर पड़ रही है, मतलब क्या। तब मेरे मन में ऐसा उसका विचार आया कि ये सब लोगों ने बहुत पुण्य किया इसलिए वो यहाँ पर आए। और भक्ति विधान में कौन आता है, जब अगर हरे कृष्ण महामंत्र कान पे गिरने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता है तो पुण्य वाला मरीज ही यहाँ पर प्रवेश करेगा ना, नहीं तो जाएगा निष्कैंडी में, नानावटी में, लीलावती में, या ऑर्बिट में जाएगा, टुंगा में जाएगा, भक्ति विधान में क्यों आएगा। भक्ति विधान में वही आ सकता है या वही पहुंच सकता है जिसका पुराना भाग्य है। इसलिए डॉक्टर संखे हमेशा कहते हैं कि, और हमारे महाराज ने भी कहा है कि भक्ति विधान में जो पेशेंट बन के आते हैं ना वो प्रभुपाद के गेस्ट हैं, वो प्रभुपाद ने उनको टिक मारा तो ही वो अंदर आ सकते हैं, नहीं तो परेशान होकर जाएंगे निकल के यहाँ से। तो ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा वातावरण जो है ना यही आपको फाइनली प्रोफेशनलिज्म, डिवोशन और ह्यूमिलिटी ये पैदा करने को हेल्प करेगा, आपको उसका सहारा लेना पड़ेगा, ये वातावरण का लाभ लेना पड़ेगा। और वातावरण हमने निर्माण नहीं किया है, बहुत लोगों ने मिलकर निर्माण किया है, बहुत शुरू से वो मिशनरी स्टेटमेंट, मिशनरी भाव और मिशन के मूड में। महात्मा गांधी कैसे थे अपने, महात्मा गांधी बस अभी आज से कपड़ा पहनना बंद, खाली लुंगी पहनूंगा और घूमूंगा वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं मिशनरी, मतलब मिशन के लिए मर जाएगा आदमी वो, लेकिन मिशन छोड़ेगा नहीं वो। ऐसे लोग थे, उन्होंने सब ये पूरा बनाया है, उनके विजन में बनाया है, हमारा किसी का कैपेसिटी नहीं है एक आदमी का कि ऐसा बनाए। और हमने बने बनाए अस्पताल में भी कोशिश किया है कि ये एटमॉस्फेयर डालने का, लेकिन कितना इम्पॉसिबल है ये भी, इसका भी एक्सपीरियंस किया हमने। 2 अस्पताल में ट्राई भी किया हम लोग ने निगड़ी में जाके, लेकिन जब तक टॉप लोगों के मन में ये विचार मन में नहीं बैठता है तब तक ये वातावरण नहीं बन सकता है। वो लोग क्या सोचते हैं, अरे ऐसा करने से बिजनेस बढ़ेगा क्या, पेशेंट बढ़ेंगे क्या, और बिजनेस बढ़ेगा क्या, उसके मन में पैसा ही रहता है, मतलब पैसे के सिवा दूसरी बात मन में आना बहुत मुश्किल है उनके लिए। उनके लिए हॉस्पिटल हो या स्टील की इंडस्ट्री हो या वॉच कंपनी हो या पेंट कंपनी हो या कपड़े की कंपनी हो, सबसे बड़ा पर्पज़ क्या है, पैसा। पैसा के अलावा कोई पर्पज़ उनके दिमाग में घुसने सकता है। आप बोले 4-5 फोटो भगवान की फ़ोटो लगाऊँ, हाँ बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे ये प्रैक्टिस मत करो, ये प्रैक्टिस चेंज करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, करप्शन कमीशन नहीं करना चाहिए, बोलेंगे नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। और कुछ भी करेंगे तो बोलेंगे अरे आप 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं फॉर स्पिरिचुअल केयर, बिजनेस कितना बढ़ेगा उससे। ऐसा सोच विचार मन में आएगा तो वो वातावरण कभी बन नहीं सकता है। ये संस्था का जो वातावरण है ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनके हार्ट का एक्सप्रेशन है, उनके हार्ट में क्या है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। प्रभुपाद के हार्ट में क्या था वो आपको यहाँ दिखाई पड़ता है, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज के हार्ट में अगर बिजनेस होता तो आपको यहाँ पर बिजनेस दिखाई पड़ता। इम्पोर्टेंट है समझना बहुत। आज आपके देश में जो हो रहा है ना, वो नरेंद्र मोदी के दिल में क्या है वो दिखाई पड़ रहा है आपको। सोचो, आप जरा सोचो इसके बारे में। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो उद्धव ठाकरे के मन में क्या है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सिंपल बात है एकदम बहुत। तो आंध्र में क्या हो रहा है, उधर का जो मिनिस्टर है उसके मन में क्या है वो उधर आपको दिखाई पड़ रहा है। वो अपनी जो चेतना है ना उसको एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन में से। जब प्रभु रामचंद्र थे तो तभी क्या हो रहा था, तो प्रभु रामचंद्र के दिल में क्या था वो सब जगह हो रहा था। इसलिए धोबी ने डाउट किया तो पत्नी को भेज दिया घर पे अपने, क्योंकि वो राम थे। तो अल्टीमेटली ना, नेता कौन है और उसकी चेतना क्या है उसके ऊपर संस्था का वातावरण बनता है। बहुत जरूरी है समझना ये। और हम शायद एक होंगे ऐसे, और 10 होंगे, 20 होंगे, अगर 50 होंगे तो दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा भी एक संस्था है जहाँ पर कोई करप्शन नहीं है, सब लोगों को प्रेम से रखते हैं, कोई किसी को दबाते नहीं है, और शासन कड़क है उनका लेकिन दयालु भी है साथ में। कड़क शिस्त है लेकिन उसमें दया भी दिखाते हैं, करुणा भी दिखाते हैं। तो ये वातावरण में भाग्य, मतलब अभी मेरा अभी रिटायर होने का समय आ गया, अभी थोड़े साल बचे, तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि अरे मैंने जिंदगी भर ऐसे संस्था में काम किया जो क्लीन है, जो डिवोशन में है, जो चैरिटी में है, जो हेल्प करने में है, जेन्युइन है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है उसके अंदर, मेरा पूरा जीवन गया उसके अंदर, कितनी खुशी की बात है। और अगर मुझे अभी नौकरी करनी पड़ेगी और कहीं जाकर तो कैसा रहेगा, एक तो ऑलरेडी मैं स्पॉइल हो गया हूँ, ऊपर से और कहीं बाहर जाऊँगा तो कैसे काम करूँगा। तो इसलिए कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, जैसे हमारी बीवी है घर की, है ना, वो दिन रात खाना बनाती है, घर साफ करती है, बच्चों को संभालती है, और हम जाते ही उसको डांटते हैं, क्या तुमने आते ही मेरे को चाय नहीं दिया, आते ही मेरे को ये नहीं दिया, गर्म पानी रखा नहीं, डेटॉल किधर है बॉटल में, अभी क्या है तो टॉवल रखा नहीं है, कितना मैं मेहनत करके घर से काम से आ रहा हूँ। वो बेचारी कुछ नहीं बोलते, तुरंत वो सॉरी सॉरी बोल के डेटॉल रख रही है, पानी भर के दे रही है, टॉवल दे रही है। तो हम लोग को समझता नहीं है कि हम लोग को जब रोज जलेबी खाने को मिलती ना तो जलेबी की वैल्यू रहती नहीं है। तो रोज अच्छी बीवी से अच्छी सेवा मिलेगी ना तो हम भी स्पॉइल हो जाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन एक दिन बीवी बीमार हो गई और अस्पताल में एडमिट हो गई तो पता चलेगा, तो टॉवल कहाँ है मालूम नहीं है, बनियन कहाँ है मालूम नहीं है, गर्म पानी किधर है मालूम नहीं है, डेटॉल का बॉटल किधर है मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, चाय कैसे बनाना है, हर्बल पाउडर किधर है मालूम नहीं है। तभी पता चलेगा अरे बीवी की कीमत क्या है। कभी बीवी के घर में कोई मौत हो गई, बीवी चली गई वहाँ पर 4 दिन के लिए, तब पता चलता है कि बाप रे कितना कचरा है घर में, हाँ चादर ठीक से रखी नहीं है, वही चादर यूज़ कर रहे हैं, टॉवल वही यूज़ कर रहे हैं, साबुन का है मालूम नहीं है। तो अच्छी चीज़ खोने के बाद ही उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो कितनी अच्छी थी, लेकिन जब तक अपने पास में होती है तो क्या लगता है दूसरी चीज़ अच्छी है, बहुत बाहर की चीज़ अच्छी लगती है बहुत। क्या तेरा वड़े में कोई दमी नहीं है, टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, वो होटल में खाया क्या स्वाद था उसके अंदर, लेकिन रोज़ खा के देखो, कभी आपको उधर कॉकरोच मिलेगा, कभी गंदा आदमी आके दारू पी के सर्विस करेगा आपको, है ना, वो किसने देखा है पीछे क्या चल रहा है, किचन में क्या चल रहा है कौन देखता है उसको, सामने एकदम क्लीन मस्त रहता है एकदम। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब हम लोग बेस्ट कंडीशन में रहते हैं तो भी उसमें हम लोग इतना वैल्यू नहीं करते उसको, हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, क्या उसमें बड़ी बात है क्या है, लेकिन उसके बाहर जाने के बाद पता चलता है हमको कि हमारी क्या स्थिति है और हमने क्या खोया। तो इसलिए बेटर ये है कि रिपीटेडली पीरियोडिकली हमारा भाग्य क्या है उसका रिविजन करें, वी शुड रिवाइज हाउ वी आर फॉर्चुनेट। और फिर थोड़ा तकलीफ हो गया तो भी ठीक है यार, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ हो तो क्या हुआ, मुझे भी होती है, उसमें क्या है, सब कुछ दुनिया में अपने मन जैसा होता है क्या। अरे बीवी चाहिए तो उसकी नीली आंखें भी चाहिए, लंबे बाल भी गोल्डन होने चाहिए उसके, और वो नम्र भी होनी चाहिए और अच्छी खाना बनाने वाली होनी चाहिए, सब साथ में कैसे होगा, और सुंदर नहीं होगी तो बहुत नम्र होगी, सेवा भावी होगी, और सुंदर होगी तो गर्विष्ठ होगी और खाना नहीं बनाएगी, तो क्या चाहेंगे आप? नीली आँख चाहेंगे कि अच्छा खाना चाहेंगे, बोलो? और किसी को दोनों मिल गया तो बीवी फिर बीमार रहती है हमेशा, हमेशा कमजोर रहती है, दिखने में सुंदर है, खाना भी अच्छा बनाती है, लेकिन हमेशा बीमार रहती है, तो क्या करेंगे आप उसको? तो दुनिया में सब कुछ बेस्ट, मराठी में कहते हैं ना, वो गाय बहु दूधी आकुड़ सिंगी, वो सबको एक साथ नहीं मिलती है, या तो दूध ज़्यादा देगी या तो सुंदर दिखेगी, दोनों में से एक मिलेगा आपको, तो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अपने भक्ति विधान में भी सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा 10/10 कैसे मिलेगा आपको? नॉट पॉसिबल। लेकिन 10/9 मिलेगा ना, कम से कम 9 तो है ना, अरे बाहर 2 भी नहीं होता है, इधर 9 तो है कम से कम, ये सोच के कंटिन्यू करना चाहिए। समझो मेरा किसी बात पे मतभेद हो गया, मेरे को कुछ एक चीज़ ऐसे करनी थी लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे हो गई, मेरे मन के खिलाफ हो गई, तो क्या हुआ? इट्स ऑल राइट, मुझे सेवा करने के लिए बहुत स्कोप है और कुछ बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। एक चीज़ मन के खिलाफ हुई तो क्या हुआ? अभी तक जो 50 चीज़ें मैंने मन के अनुकूल की है उसका क्या? अभी तक 22 साल में ऐसी कितनी चीज़ें मेरे मन के अनुसार मैंने की है, मेरे अधिकार में की है, सब लोग ने हाँ हाँ बोला है उसके लिए, तो मैं भूल जाता हूँ। एक चीज़ मेरे मन के खिलाफ हो गई तो मुझे गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि मेरे मन में थैंकफुलनेस नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, धन्यवाद की भावना नहीं है, कृतज्ञता नहीं है मेरे मन में, खाली मैं और मैं, यही है, स्वार्थ है, इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन मन में जैसे ही हमारे ग्रैटिट्यूड धन्यवाद का भाव आ गया ना, धन्यवाद का भाव आने से आप बहुत सारी तकलीफें झेल सकते हैं। बारिश हो रही है, कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, कोरोना है, तकलीफ हो रही है, लेकिन आपके मन में धन्यवाद है ना, ठीक है भगवान आपने इतना इतना कुछ दिया है, तो थोड़ा तकलीफ आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, तो आप खुश रहेंगे। तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म, डिवोशन और ह्यूमिलिटी, ये साथ में रहने से ये आपका गोल है, ये इंस्टेंट प्राप्त होने की चीज़ नहीं है, ये आपका लाइफ का गोल है, आपको एक दिन इसको अचीव करना है, कोशिश करनी है उसके लिए। और ये भी जानना है कि जब आप हृदय में डिवोटी रहेंगे और उसके तरह काम करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म आएगा आपके अंदर, क्योंकि आपका डिवोशन आपको हेल्प करेगा प्रोफेशनल बनने के लिए। लेकिन प्रोफेशनल बनेंगे तो डिवोशन आएगा कि नहीं, गारंटी नहीं उसका, इसलिए डिवोशन मेन है। जैसे कोई आदमी उसमें नम्र है, आदमी उसमें कोई स्टाफ है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, नम्र आदमी है, इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको लेंगे आप, क्योंकि आपको नम्र होने की वजह से आपको उसको सिखा सकते हैं, तो एक्सपर्ट बना सकते हैं। और कोई एक्सपर्ट आदमी है बहुत, लेकिन बहुत प्राउड है, तो वो कभी सीखेगा नहीं, वो बहुत प्राउड ही रहेगा, आपका काम नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मन में डिवोशन होना चाहिए काम के प्रति, अपने संस्था के प्रति और बाद में भगवान के प्रति। वो डिवोशन होगा ना आपके मन में तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो सब पूरी हो सकती है। लेकिन डिवोशन नहीं होगा और घमंडी होंगे आप, और आप 10 PhD होंगे तो भी आप काम के नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दुर्गुण का परिणाम आपके काम पे आएगा, आपका अहंकार की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी का यही इम्पोर्टेंट है। देखो प्रभुपाद जी इतने बड़े संत थे, एक जगह प्रवचन कर रहे थे और बता रहे थे कि एक ब्राह्मण होता है, वर्ण का वर्णाश्रम का लेक्चर दे रहे थे, एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, एक शूद्र होता है। वैश्य क्या करता है, शूद्र क्या करता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो एक आदमी को प्रवचन में बहुत गुस्सा आया, तो बोलता है कि ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास है, तो आप कौन से क्लास में हो, आप सबके गुरु हो क्या? तो उधर जर्मन डिवोटी बैठे हुए थे ऐसे तगड़े एकदम, उनको लगा अभी अपना सेवा करने का मौका आ गया, अभी उसको मुक्का मारने का टाइम आ गया है, तो खड़े होने वाले थे, इसको तोड़ देंगे अभी, क्या बात करता है, नॉनसेंस। और उठे ऐसे मारने के लिए, और बीच में प्रभुपाद को देखा तो प्रभुपाद जी नीचे देखकर आंखों से आंसू आ रहे प्रभुपाद जी के, तो उनको आश्चर्य हो गया, रुक गए, ऐसा क्या हो गया? और सडनली प्रभुपाद जी बोले, कि मैं फिफ्थ क्लास हूँ, मैं ये सबका सेवक हूँ, बोलते हैं आई एम द फिफ्थ क्लास। उनको क्या उम्मीद थी कि प्रभुपाद जी बोलेंगे हाँ हाँ ये सबका मैं गुरु हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा आंसर क्यों दिया, क्योंकि वो वास्तविक में नम्र थे। बोलते हैं कि ये सब लोगों का सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो आदमी भी शांत हो गया, इनका गुस्सा भी शांत हो गया, और प्रभुपाद को भी कुछ लगा नहीं कि मुझे मेरा इंसल्ट कर रहा है प्रश्न पूछ के, क्योंकि वो सही में नम्र थे, इसलिए वो ऐसा जवाब दे सके। नहीं तो बोलेंगे यू गेट आउट फ्रॉम हियर, इफ यू डोंट लाइक माई लेक्चर गोट आउट, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो बोले कि नहीं आई एम फिफ्थ क्लास। वो सुन के आदमी भी हैरान हो गया, वो उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी आंसर की। तो विद्या विनयेन शोभते, ऐसा मराठी में कहावत है कि जितना पंडित आदमी होगा ना, वो विद्या उसको शोभा देगी, तभी वो जब वो नम्र होगा। विद्या जब तब शोभा देती है जब वो नम्र आदमी के पास होती है। जब विद्या घमंडी के पास गई तो उसका दुरुपयोग होता है। तो बड़ापन हो, अधिकार हो, प्रभाव हो, ऐश्वर्य हो, वो नम्र आदमी के पास आएगा ना तो उसका विधायक उपयोग होगा, और घमंडी आदमी के पास गया तो खलास, फिर फिनिश। तो हमारे पास में, अरे हमारे इतिहास में अस्पताल के एक घटना ऐसी हुई है कि हमारे गुरुदेव, आप लोगों को बताना चाहिए, हमारे गुरुजी जो अस्पताल के प्रमुख प्रणेता हैं, वो डॉक्टर संखे को विनती कर रहे हैं आप डायरेक्टर बनो, आप बनो। और डायरेक्टर बोल रहे हैं, मतलब डॉक्टर संखे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं बनना है, किसी और योग्य व्यक्ति को बनाओ। तो गुरु महाराज खुद बोले कि मंदिर में भी कमांडर प्रेसिडेंट बनने के लिए डिवोटी लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, मंदिर में भी बहुत रहता है मुझे बनना है, मुझे, मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ। ऐसा बहुत रेयर है कि आपको कहा जा रहा है कि आप बनो और आप बोल रहे हैं मुझे नहीं बनना है, किसी और को बनाओ। अरे कुर्सी किसको नहीं चाहिए, पावर किसको नहीं चाहिए, बताओ। पावर के लिए तो सब लोग, दुनिया पागल है इधर पावर के लिए। तो ये दिस इज स्पिरिचुअल, अगर ऐसा होता है तो ये स्पिरिचुअल है। तो उन्होंने गुरु महाराज को एक प्रश्न पूछा, गुरु जी ने बहुत उनको बोला कि आपको बनना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये सेवा करने से मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा क्या। तो गुरु जी बोले पक्का निश्चित होगा, आप करो। तो बोला कि ठीक है, अगर मेरा स्पिरिचुअल प्रगति होता है तो फिर मैं डायरेक्टर बनूंगा। तो हमारे गुरु महाराज इतने प्रभावित हुए, गुरु जी ने ये बात को कितने प्रवचन में बताया, अभी भी बताते हैं कि 22 साल पहले ऐसा हुआ था, हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया, वो तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में कहा कि स्पिरिचुअल। हाँ, और एक पूछा कि गुरु महाराज आपको प्रसन्नता होगी क्या, मैं बनूंगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे शिष्य के रूप में पूछ रहा हूँ। तो बोला मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा, फिर उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। कौन है इस दुनिया में ऐसे, बताओ आप। उधर पॉलिटिक्स करके उसको हटा के बैठना चाहते हैं उसके ऊपर, है ना, कुछ ना कुछ गोलमाल करके वो कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है, बहुमत किसी को है लेकिन गोलमाल करके किसी और को, बंदर को बिठा दिया, है कि नहीं, दिस इज पॉलिटिक्स। योग्य ना होते हुए कंस ने क्या किया, उग्रसेन को मार के जेल में डाल के राजा बना। औरंगजेब ने क्या किया, हाँ शाहजहान को मार के राजा बना। शाहजहान ने क्या किया, हुमायूं को मार के राजा बना। सब ने यही किया है दुनिया में, पावर के लोग क्या नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में, हमारी संस्था में ऐसा भी घटना हुई है तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। दिस इज स्पिरिचुअल। जब स्पिरिचुअल बातें होती हैं बातों में या क्रिया में, तो ही ऐसे अद्भुत अनुभव आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो ये प्रोफेशनलिज्म होगा तो गर्व होगा, लेकिन ह्यूमिलिटी होगी तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। एज सुन एज यू कंबाइन स्पिरिचुअल प्रोफेशनलिज्म विद स्पिरिचुअलिटी, तो आपको नम्रता मिलेगी, डिवोशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उधर। ये बहुत रेयर बातें हैं प्रभु जी, आप सोचना इसके बारे में, बहुत रेयर चीज़ें हैं, वो हमारे आंखों के सामने हो रही है, हम उसके भाग्यवान, क्या कहते हैं, प्रेक्षक हैं, हम लोग भाग्यवान हैं, देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ ही। अभी ये कोरोना के अंदर पता नहीं आपको कितने लोग रात को यहाँ पर आए, हाँ एक रुपया नहीं लेके आए, 4-4 लाख का बिल हुआ, छोड़ दिया उनको ऐसे ही, क्योंकि गुरु जी का आदेश है, वही इंसानियत भी कुछ होती है ना, खुद का नुकसान करके भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मर रहा है बेचारा, वो जिंदा रहने दो उसको, तो रात रात में उसको कैथ लैब का एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, उनको दिमाग में स्टेन डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, बच्चे को बचा रहे हैं, क्योंकि हमको श्रद्धा है कि हम अगर सेवा करेंगे निष्पाप भाव से तो भगवान उसको सहारा देंगे, भगवान आगे कृपा करेंगे। हमको इस बात पर श्रद्धा है। अच्छे कर्म का कभी बुरा फल निकलता नहीं है, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल निकलता है। तो ये ध्यान रखते हुए प्रामाणिक हृदय से काम करना चाहिए। प्रभुपाद के प्रति अगर हमको, आज उनका बर्थडे है, प्रभुपाद के प्रति अगर हमको धन्यवाद देना है तो ऐसे निष्पाप निस्वार्थ सेवा करनी है। यहाँ पर वही चाहते हैं, वो कल्याण हो लोगों का, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, उनको भगवान के नाम पर रुचि निर्माण हो, वो जीवन में भक्त बने और उनको दर्द न हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो, उनके दर्द देख के हमको दर्द हो रहा है, ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं। कौन परवाह करता है किसी की आजकल? हु केयर्स फॉर एनीबडी? नोबडी केयर्स। लेकिन अगर हम आइए बैठिए हो गया, तो सारांश में हम सब लोगों को प्रभुपाद को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तो प्रभुपाद थे इसलिए महाराज आए, हमारे महाराज आए इसलिए भक्तिविदान हॉस्पिटल बना। क्योंकि जब भी भक्तिविदान हॉस्पिटल बनने का बात निकली थी तभी इस्कॉन के अंदर किधर भी हॉस्पिटल नहीं था, और लोग बोल भी रहे थे हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनाते, हम मंदिर बनाते हैं। वो स्थिति में दूरदृष्टि से विचार करके उन्होंने हॉस्पिटल बनाया कि ऐसा हॉस्पिटल बनाने का जो भक्ति वाला हो, जो सबके कंसेप्ट में नहीं था वो, लेकिन आज आपको उसका अनुभव हो रहा है कि आप उसमें काम कर रहे हो, 22 साल भी हो गए उसको। बाद में इस्कॉन में उसने मान्यता दे दिया कि यस बाबा ये सही बात है, ये बढ़िया चीज़ है, हम लोग भी बीमार होते तो यहीं आते भक्ति विधान में। तो ऐसे इतिहास के हम लोग साक्षीदार हैं ना, वे वेरी फॉर्चुनेट। तो मुझे ये लगता है ऐसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगेगा तो आप किसी और को बताना। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। इसका मतलब मॉर्निंग प्रेयर आप सुन रहे हो और मॉर्निंग प्रेयर पे विचार भी करते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे वो बोल रहे हैं उनको बोलने दो यार, उनको खुशी हो रही है, हमको क्या तकलीफ है, उनको बोलने दो, बोलते जाने दो, उनका क्या, उनकी मर्जी है बोलने की, हमको थोड़ी सुनना है उसको। लेकिन वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसको विचार कर रहे हैं, कैसे करना है सोच रहे हैं, ये भी भाग्य की बात है। ओके और कुछ लोगों को लगता है कि प्रेयर में आने की जरूरत क्या है, वो तो किसी और के लिए, हमारे लिए क्या जरूरत है उसकी, हम तो प्रेयर के बिना ही अच्छे हैं। ये भी एक भ्रम है लोगों का। तो आलटून पालटून का होना पण येत रहा प्रार्थनेमध्ये, प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना के बिना आदमी की उन्नति नहीं होती है। अभी आईटी के लोग बोलेंगे क्या जरूरत है, हाँ आईटी के लोग आते ही नहीं है, फिर वो ब्रांडिंग प्रमोशन वाले, फिर वो अकाउंट वाले ऊपर आठवें माले वाले, फिर वो पहले माले वाले, कुछ बीमार लोग हैं वो कभी भी दिखते नहीं है, क्योंकि आदत छूट गई उनकी अभी। तो आएंगे कम से कम तो आपको कुछ सुनने को मिलेगा, बढ़िया बातें जो मैं रोज सीखता हूँ यहाँ पर। मैं पागल नहीं हूँ रोज प्रार्थना में आने के लिए, रोज मुझे डॉक्टर संखे से, शिव प्रसाद से कुछ ना कुछ नई बातें सुनने को मिलती है, मेरी अच्छाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए। इसलिए मैं आता हूँ उधर, क्योंकि मुझे वो इच्छा है वो ग्रहण करने की। कोई भी संस्था में ऐसी प्रार्थना नहीं होती है जो लोगों के कल्याण के लिए होती है, वो केवल धन के लिए होती है। आप लोग आइए और लाभ लीजिए उसका। फ्री में सत्संग हो रहा है यहाँ पर, फ्री में सत्संग हो रहा है, फ्री में अच्छे विचार बांटे जा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, आप उसके भागीदार हो, हकदार हो, तो आप आइए लाभ लीजिए उसका। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद की जय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जस्ट सुरुवात में आलात आणि 20 मिनिटं मध्ये होती आपल्याला, पण प्रभूजी काय होत आहे ना प्रभूजी,